श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 22 श्लोक 29 दिनांक 27 मई 2015 स्पीकर हिज ग्रेस वनमाली प्रभु
मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवम् सादवैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तत कांचन गौरांगी राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुत्विषये नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो कि अखिल रसामृत मूर्ति पर ब्रह्म समस्त ब्रह्मांडों के एकमात्र नायक दया के सिंधु दया के सागर दया के मूर्ति कृपा के सिंधु कृपा के सागर करुणा के निधि सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी प्रियतमा इनके परम अनुकंपा एवं महिती कृपा से आज हम आप उनके छत्र छाया के नीचे उनके चरण कमलों में सेवा अवसर प्राप्त कर रहे हैं और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है सत्संग का हमें आज के इस भागवत सत्र के माध्यम से प्राप्त हो रही है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी श्री श्री गौर निताई जी इनके परिकर सहित के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए भगवान का यह असीम कृपा जिन व्यक्तित्व के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है वह कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आज के सत्र के ओर हम अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को प्रारंभ करते हैं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण अपने शरणागत भक्तों का किस प्रकार से मनोकामना, किस प्रकार से उनके इच्छाएं, किस प्रकार से उन्हें पूरी तरह से तृप्त करके उन्हें आशीर्वाद देते हुए आगे भगवान और एक कथा कहेंगे, आगे एक और कथा सुखदेव गोस्वामी महाराज कहने वाले हैं। इसलिए कहते हैं अतः अब जो कथा है, अब यह प्रसंग जो है, कुछ महीनों की बात की घटना है। गर्मी खूब आई है, अतः उस समय की बात है। वो गर्मी के महीनों में क्या हुआ था, गोपे बहुत सारे भगवान के सकाएं, अनेक सकाएं, उन सकाओं का नाम आगे आने वाले श्लोक में मिलता है, तो एक बार उन सकाओं का नाम हम वर्णन करेंगे। यहाँ पे अनेक अनेक सकाएं, स्टोक कृष्णा, अंशु, श्रीधाम, सुबल, अर्जुन, विशाल, वृषभ, ओजस, विन, देव प्रस्थ, वरुतप, यह सब उनके अनेक अनेक और मित्र हुए, सब गोपों के साथ परिवृतो भगवान घेरे हुए थे। और भगवान कृष्ण देवकी सुत यानी कि देवकी के पुत्र बहुत दूर वृंदावन छोड़कर बहुत दूर चले गए गायों को चरने के लिए। तो यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं कि अब सुखदेव गोस्वामी महाराज जो कि एक महान संत हैं, एक विरक्त सन्यासी हैं, वे भगवान के मधुर लीलाओं को सुनाते हुए भगवान किस प्रकार से भक्त वत्सल है और केवल अपने उन भक्तों का ही मनोकामना पूरा नहीं करते हैं जो पूरी तरह से निचावर है, पर ये भी बताते आगे कि भगवान उन गोपियों पर भी जो वृंदावन से दूर थे, वे ब्राह्मण के पत्नी थे, वो ब्राह्मण जो याज्ञिक ब्राह्मण थे, कर्मकांडी थे, उनके पत्नी वो किस प्रकार से भगवान के लिए तरस रहे थे या भगवान के लीलाओं को 6 साल से या 7 साल से सुन रहे थे कि कृष्ण आज ऐसा हुआ, कृष्ण के साथ ऐसा हुआ, कृष्ण ने ऐसा किया, ये सब सुनते सुनते उनके मन में कृष्ण को देखने का जो इच्छा प्रकट हुई, कृष्ण को सेवा करने का जो भाव प्रकट हुआ, कृष्ण उन गोपियों के साथ आदान प्रदान करेंगे। अर्थात भगवान भावग्राही है, चाहे हम किस भी स्थान पे रहो, कोई भी समय क्यों ना हो, परिस्थिति क्यों ना कुछ भी हो, अगर भाव हमारे पास होगा तो वह कृष्ण हमारे पास आ जाएंगे। भावग्राही जनार्दना कहते हैं भक्त वत्सल, भक्तों का भाव से भगवान खींचे जाते हैं, भक्तों के भाव से भगवान खरीदे जा सकते हैं, भक्तों के भाव से भगवान उनके हो जाते हैं। तो केवल उन प्रेमी गोपियों का ही नहीं, अब आगे और गोपियों का भी इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी महाराज जी यह बताना चाहते हैं, कृष्ण के प्रति किए गए जो सेवा है या कृष्ण के प्रति किए गए भक्ति है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। केवल बात यह है कि कृष्ण हमें चाहते हैं, हम कृष्ण को कितने चाहते हैं, अगर थोड़ा अगर हम भाव से भगवान को पुकारे या भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान जरूर हमारे समक्ष आएंगे, खींचे आएंगे। यह हाल ही का एक घटना है। वैसे भक्त, यह भक्त जो हैं मैक्सिको के भक्त हैं। मैक्सिको एक पाश्चात्य देश में आता है। मैक्सिको यहाँ के भक्तगण एक बार इच्छा किया कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हो जाए। देखिए ये भक्त अभी अभी हुए हैं, नया भक्त हैं। ऐसा नहीं कि ये गोपियाँ जो भागवत में वर्णित है, वैसा नहीं, नया नया भक्त हैं। अभी अभी भौतिक जगत से के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कृष्ण के भक्तों द्वारा, प्रभुपाद जी के आंदोलन के द्वारा, प्रचार किए गए भक्तों के द्वारा आकर्षित होकर कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। तो वह जगन्नाथ रथ यात्रा कर रहे हैं। देखिए जगन्नाथ जी कितने भावग्राही हैं। वो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा कर रहे हैं, पर ये भक्त कैसे हैं, वे जगन्नाथ जी का नाम तो ठीक से पुकार नहीं पाते हैं। जगन्नाथ जी का नाम जो है ठीक से पुकार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिको जो देश है, वो प्रांत ऐसा है, वहाँ के लोग ऐसे हैं जो ज नहीं बोल सकते। उनके अक्षरों में ज नहीं है। जैसे हम लोग जगन्नाथ जी या जय बोलते हैं तो उसमें ज ज आता है, जय जगन्नाथ। तो वो ज के जगह में तो बोल नहीं पाते हैं, ज के जगह में य य बोलते हैं। तो भगवान, देखिए भगवान तो सब कुछ जानते हैं, पर इन भक्तों का भाव भी जान गए। वो लोग गा रहे थे जय जगन्नाथ के जगह में जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। ऐसे हम गाते हैं, ठीक है, ये भगवान का कृपा है, पर वो गा रहे थे आय जगन्नाथ, आय जगन्नाथ, आय जगन्नाथ स्वामी, आय जगन्नाथ, आय जगन्नाथ बोल रहे थे। पर है वो जय जगन्नाथ, पर वो बोल रहे थे आय जगन्नाथ, आय जगन्नाथ, आय जगन्नाथ, आय जगन्नाथ स्वामी, आय जगन्नाथ, आय जगन्नाथ, आय जगन्नाथ, आय जगन्नाथ स्वामी, आय जगन्नाथ। पर जगन्नाथ जी जो है वो इतने भाव के, इतने भाव के भूखे हैं, ठीक है, वो मुझे ही पुकार रहे, समझ गए, और वो मैक्सिको में अपना रथ यात्रा के लिए वहाँ पे प्रकट हो गए जगन्नाथ स्वामी की। तो ये भगवान जगन्नाथ जी है, भावग्राही है, भगवान कृष्ण भावग्राही है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लीलाएं का वर्णन आ रहा है, ऐसे भक्तों का वर्णन आ रहा है। इससे पहले हम सुने, जैसे कल तक हम सुनते आ रहे थे कथा में, किस प्रकार से वह गोपियाँ जो भगवान को सर्वोच्च निछावर करके, भगवान के सर्वोच्च भक्त बन के, सर्वोच्च प्रकार के सेवा और प्रेम को प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके बातों को भगवान सुन रहे हैं। और यहाँ पे वर्णन आएगा कि कैसे ब्राह्मण गोपियों का भी सुनेंगे। भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन हम श्रवण करते आ रहे हैं। अब भगवान का जो लीला है, माधुरी, अति माधुरी होता जा रहा है। ये जो लीला है ब्राह्मणों का, पत्नियों का उद्धार, ने उनको उनको भगवान दर्शन देते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, ये भी बहुत भक्तों को प्रेरणा देने लायक लीला है। और यही भगवान इतने रिच गए इन ब्राह्मणों के भक्ति से, कहते हैं कि तत्र भगवान उसी गांव में कुछ समय के लिए ठहरे, और उसी गांव में इंद्र का यज्ञ भी किया जा रहा था। आगे जाके गोवर्धन जी का वर्णन आएगा, गोवर्धन पूजा का वर्णन आएगा, और उस 7 दिन भगवान ने जो लीला किया उसका वर्णन आएगा। भगवान सारे भक्तों का इच्छा पूरा करते जा रहे हैं। ये कृष्ण का एक काम है, कृष्ण का एक ही काम है, वो देखते हैं कौन उसका भक्त है और उनकी इच्छा क्या है। जैसे ही कोई भक्त बन गया उसका इच्छा को भगवान जान लेते हैं और इस इच्छा को भगवान पूरा कर लेते हैं। वैसे इस जगत के हर जीव का इच्छा पूरा किया जाता है, हर जीव का इच्छा। कोई जीव चाहे वो भौतिक इच्छा भी रखे, उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उसे भौतिक शरीर देते हैं। एक इच्छाओं के विषय में हमारे चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज का जो सुंदर लीला आता है, वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज जैसे ही भगवान का दर्शन करते हैं, फिर दर्शन करते ही वो कृतार्थ हो जाते हैं। वो बोलते हैं, स्वामी मैं आपका दर्शन प्राप्त करके, आपका भक्ति प्राप्त करके बहुत ही कृतार्थ हो गया। आपका भक्ति मिला, मुझे सब कुछ मिला। ये तो एक हीरा है, कोहिनूर से भी बड़ा हीरा है, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं कुछ लीजिए, मैं जब दर्शन देता हूँ तो कुछ वरदान देता हूँ, मांगिए मांगिए। बोला, क्या वरदान मांगू, कुछ नहीं चाहिए। बोला कि भक्ति मिल गया, सब कुछ मिल गया, फिर भी आप मांगिए। भगवान ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई जीव इच्छा पूरा करे और भगवान इच्छा पूरा नहीं करे तो लोग कहेंगे ध्रुव महाराज को भगवान ने फंसा दिया, 6 महीने तक वो खूब तपस्या किया, हाँ आगे जाके भावी पीढ़ी में कोई कहेगा बेचारा ध्रुव महाराज 6 महीने तक खूब तपस्या किया, उसको राज्य चाहिए था, उसके दादाजी से भी बड़ा राज्य चाहिए था, भगवान ने ऐसे ऐसे सुंदर रूप को बताकर उस इच्छा को ठंडा कर दिया और उसे कुछ नहीं दिया। बोला, मेरा भक्ति सब कुछ है, ऐसा बोल सकते हैं लोग। तो भगवान बोलेंगे, याद कर आपने क्या इच्छा किया। तब कहा कि नहीं नहीं, मुझे वो बड़ा राज्य नहीं चाहिए। भगवान कहते, इतना बड़ा राज्य का राजा बनोगे, इतना सुख मिलेगा। नहीं नहीं, इतना बड़ा राज्य और उसका सुख वो भी तुच्छ है। भगवान, आपके भक्ति में मिलने वाला जो सुख है वो बड़ा हीरा के समान है, और ये जो सुख भौतिक जगत का बड़ा राजा बनकर भी मुझे मिलेगा वो निकृष्ट है, एक टूटा हुआ कांच के टुकड़े के बराबर होगा। देखिए, भौतिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे हीरा का क्या मूल है, और कांच के टुकड़ा, हीरा को हम संभाल के तिजोरी में बंद करते हैं, है ना, उसको पॉलिश करते हैं, उसका व्यापार किया जाता है, चुप चुप के सब करते हैं, है ना, हीरा का इतना। और कोई बोले ये कांच का टुकड़ा है तो क्या उसे संभाल के रखेंगे, उसे तो फेंक देंगे कचरे में। तो ध्रुव महाराज कर रहे हैं, आपका भक्ति से जो सुख मिलने वाला है, सेवा का आनंद जो है, उस सेवा के आनंद में इस जगत का जो भौतिक सुख है, भोग करके जो सुख मिलेगा वो सुख नगण्य और तुच्छ है। तब भगवान कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपका इच्छा जो है वो हम पूरा कर ही छोड़ेंगे। नहीं नहीं, मैं आपका भक्त हो गया, मुझे आपका भक्ति चाहिए, मुझे आपके भक्ति से वंचित मत कीजिए। तब भगवान कहते हैं, याद कीजिए, ये भागवत में नहीं अन्य पुराणों में वर्णन आता है। वो बताते हैं कि हे ध्रुवा, पिछले जन्म में आप एक महान संत हुए, महान ऋषि हुए और ऐसे तपस्वी हुए कि एक गुफा में आप ऐसे तपस्या किए, ऐसे तपस्या किए, इतना तीव्र तपस्या से मैं प्रसन्न होकर आपको दर्शन देने हेतु गरुड़ में आरूढ़ होकर आ ही रहा था, तब आप अपने आंख खोले, आपने देखा कि उस पर्वत के गुफा से आगे एक रास्ता था नीचे, उस रास्ते में आपने जब नजर डाले तो देखा कि वहां पे एक राजा बड़े ठाट बाट के साथ रथ पे आरूढ़, और उसके सिपाही और उसके आगे पीछे अनेक प्रजा थी, सब राजा का जय जयकार कर रहा था, राजा बड़े शान के साथ चल रहा था। उस पल मैं दर्शन देने आ ही रहा था ऊपर से, और आपके नजर नीचे था, और दायतो विषयान पुंसान हो गया, अर्थात आपका ध्यान उस राजा पे गया और उस राजा का सुख का आप ध्यान करने लगे और कहा कि काश मैं भी राजा होता तो कितना ठाट भाट के साथ जीता। तब भगवान कह रहे थे कि और गरुड़ जी का जो वाहन पे बैठा था तो मैंने तुरंत रोक लिया, ब्रेक लगा दिया। फुल स्पीड में तो आ रहा था, मैं एकदम से ब्रेक लगा दिया, फिर टर्न कर लिया। मेरा भक्त का ये इच्छा ये भी पूरा करना होगा। तब ध्रुव महाराज कहते हैं क्यों मैंने ऐसा भौतिक इच्छा किया। 36,000 वर्ष तक आप राज्य करोगे डरो मत ध्रुव, आप मेरे भक्त बने रहोगे। ध्रुव रोने लगा, बहुत रोने लगा। बोला नहीं नहीं नहीं, पर कहा कि आपने इच्छा किया और मैं पूरा नहीं करूं। इसी प्रकार से जो जो इच्छा जो जीव करता है, बद्ध जीव भी करता है इच्छा, वो भी पूरा हो जाता है। कोई जीव इच्छा करता है कि पानी में अंदर तैरने का तो उसे मछली का शरीर मिलता है, किसी को इच्छा होता है हवा में उड़ने का उसे पक्षी का। नहीं तो इतने सारे वैरायटी इस जगत में क्यों? जीव का इच्छा है, उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार के शरीर भगवान देते हैं। बोलते कि देखो इच्छा पूरा करके, भौतिक इच्छा। तो इच्छाएं भगवान पूरा करते हैं, पर भक्तों का इच्छा भगवान स्वयं आके पूरा करते हैं। बद्ध जीव का इच्छा वो समय क्या और काल परिस्थिति के अनुसार पूरा हो जाता है। तो इच्छाएं हमारे जो हैं बहुत मायने रखता है, बहुत इसका वैल्यू है, उसका बहुत महत्व है। हमारे मन में क्या इच्छा अब हो रही है वो हमें जानना चाहिए, क्योंकि भगवान वो इच्छा को पूरा करेंगे। तो बहुत सावधान होना चाहिए। तो ये गोपियाँ जो थी, इससे पहले ये जो लीला है ब्राह्मण पत्नियों का, इससे पहले जैसे हम सुनते आ रहे थे, उनका एक ही इच्छा थी कि कृष्ण उनके पति के रूप में प्राप्त हो। और वो इतने तीव्र कृष्ण से प्रेम कर रहे थे। ये प्रेम का जो लीला है उसका वर्णन हमने सुने और भगवान ने दर्शन दिया और उन पत्नी उनके पर इतने प्रसन्न हुए और जैसे भगवान ने कहा वैसे वे किए, तो भगवान पूरे निचावर हो गए। अब मैं आपके कपड़े ही नहीं, मैं अपने आप को आपको दूंगा। और कहा कि आने वाले शरद काल में ये था हेमंत ऋतु मार्चिस मास, फिर लगभग 9-10 महीने के बाद फिर से शरद ऋतु में हमारा मुलाकात होगा, तब बहुत आनंद का अनुभव करेंगे। इस प्रकार से भगवान का ये प्रेम का लीला, भगवान और गोपियों के बीच का जो प्रेम उसका वर्णन किया जा रहा है। जगत में लोग प्रेम कथा सुनना चाहते हैं, लव स्टोरीज। तो ये असली प्रेम है गोपियों का और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है वो असली प्रेम है, असली लव स्टोरी, शाश्वत लव स्टोरी, सत्य है। ये लव स्टोरीज जो है राधा और कृष्ण, कृष्ण और गोपियों के बीच में, ये असली लव स्टोरी है। भगवान गोपियों के साथ प्रेम लीला करते हैं तब तो जाकर इस जगत में भी प्रेम लीला होता है ना। जन्मादि यसे यतः, भगवान प्रेम लीला किए और यहाँ पे भी लोग प्रेम लीला करते हैं, पर इस जगत का जो प्रेम लीला है क्षणभंगुर रहता है और इसमें दुख ज्यादा रहता है, कोई सुख नहीं है। वो शाश्वत भी नहीं रहता है और शाश्वत सुख भी नहीं देता है, चाहे कोई कितना सच्चा प्रेम भी किया हो, रोमियो जूलियट हो, हीर रांझा हो, और कौन कौन है, बहुत सारे नाम है, लैला मजनू हो, पर ये प्रेम जो है सुख नहीं देता है, इतना दुख देता है। रोमियो भी तड़प तड़प के मर गया, जूलियट भी तड़प तड़प के मर गई, मजनू भी मर गया और लैला भी तड़प तड़प के मर गई। पर कृष्ण और गोपियों का जब वर्णन आता है कल के श्लोक में देखते हैं, कृष्ण का दर्शन करते करते ये गोपियां इतने भाव विभोर हो गए कि वे देखते रहे, कृष्ण से जुदा हो नहीं पा रहे थे। बहुत उनका मन तो भर गया, पर कहते हैं कि वे कृष्ण को अब अपने आंखों से निहार रहे थे, अब कृष्ण का दर्शन वे कह रहे थे करते रहें करते रहें करते रहें, और वापस घर जाने का इच्छा नहीं हो रहा था, तो कृष्ण धीरे धीरे से चले गए। यह है भगवान कृष्ण और गोपियों का यह प्रेम कथा। आगे और लीलाओं के द्वारा इस कथा को जारी करेंगे, पर यहाँ पे भगवान सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को एक और कथा कहेंगे। केवल प्रेमियों का ही इच्छा भगवान पूरा नहीं करते हैं, अन्य भक्तों का भी इच्छा पूरा करते हैं। ऐसे भी कुछ भक्त वृंदावन से दूर हैं, वो यज्ञ ब्राह्मणों के पत्नियां हैं, वे 6 साल से कृष्ण कथा सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कृष्ण ने पुतना का वध किया, वो कृष्ण ऐसा किया ऐसा किया, तो ये सब सुन सुनकर उनके अंदर तीव्र इच्छा उत्पन्न हुए। फिर सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं अतः गोपे परिवृत, भगवान कृष्ण उनके इच्छा पूरा करने के लिए एक दिन उस तरफ ही जा रहे हैं, अतः गोपे अपने सखाओं के साथ घेरे हुए वो कृष्ण भगवान जो सब कुछ जानते हैं, हाँ सबका ज्ञान रखते हैं, वो भगवान वो देवकी सूत है। वो देवकी सूत जो है इसका वर्णन पिछले बार भी हमने किया था, जो श्लोक है वेणु गीत में आता है, गोपियां गाते हैं वृंदावनम सखी भुव वितुनोति कीर्तिम, उस श्लोक में यह शब्द देवकी सूत करके आते हैं, देवकी सूतयो पदाम्बुज लब्ध्वा लक्ष्मी, भगवान जो कि देवकी सूत हैं, उनके चरण कमलों का पदाम्बुजों का लब्ध प्राप्त कर का लक्षण प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए वृंदावन भूमंडल का कीर्ति को बढ़ा रहे हैं। उस श्लोक में भी देवकी सूत वर्णन आता है। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये देवकी नाम जो है ये बृहद विष्णु पुराण के अनुसार यशोदा मैया का भी नाम है, और वो बहुत सुंदर कहते हैं, बृहद विष्णु पुराण से वो श्लोक लेते हैं और कहते हैं द्वी नामनी नंद भार्या यशोदा देवकी इति च अतः साक्यम अद्भुत तस्यम देवकी शौर्य जायया, द्वी नामनी नंद भार्याया, दो नाम है किसका, नंद भार्याया नंद के पत्नी का क्या नाम है, यशोदा देवकी इति च, यशोदा और देवकी ये दोनों किसका नाम है, नंद के भार्य नंद के पत्नी का। अतः साक्यम अद्भुत, इसलिए यशोदा और देवकी के बीच में बहुत क्या हुआ, साक्य फ्रेंडशिप हो गया, तो इस प्रकार से उनका जय जयकार कर रहे हैं, इस श्लोक में ऐसा वर्णन आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो वर्णन आया है भगवान देवकी सूत, ये यशोदा नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का है, वे अपने सखाओं के साथ उन भक्तों का इच्छा पूर्ण करने जा रहे हैं जो तीव्रता से भगवान के लीला सुनकर भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, वृंदावन से दूर जा रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं, भगवान के बारे में कहते हैं, वृंदावन के बारे में कहते हैं कि वृंदावनम परित्याजम पदम एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर भगवान एक कदम भी नहीं लेते हैं। तो भगवान जो है अपने जो वन में से बहुत घर से बहुत दूर निकलते हैं, बहुत दूर, और ये समय कैसा था, अतः तो वर्णन करते हैं कि ये जो समय था गर्मी का समय था, गर्मी के समय सुबह सुबह बहुत जल्दी सारे गोप निकले थे और कृष्ण को बीच में रखे थे, और कृष्ण को बीच में रख के उनके आजू बाजू में रक्तरक पत्रक ये श्लोक कृष्ण इत्यादि सब थे, और सब बढ़ रहे थे वृंदावन से दूर, क्यों जा रहे थे? चारयान, आगे जो एक गाय जा रहे थे, चारयान गाहा, और बहुत सारे गाय जा रहे थे, उनको गोचारण करने के लिए दूर गए, और साथ में कौन था? सह अग्रज, सह यानी कि साथ में, किसके साथ? उनके बड़े भाई अग्रज के साथ, बलराम जी के साथ। वे सब एकदम दूर निकल गए, दूर निकल गए, दूर निकल गए। दूर निकलने के बाद अब जो वर्णन आएगा, कृष्ण वहाँ पे एक बात कहते हैं, इसका अनुवाद है पर तात्पर्य नहीं, उस श्लोक को मैं यहाँ पे आज लूंगा। वो देखते हैं ये सब धूप इतना आ रहा है, पर ये वृक्ष देखिए, ये वृक्ष इतने सारे बड़े बड़े वृक्ष हैं, ये सब वृक्ष देखो कितना सुंदर काम कर रहा है, ये वृक्ष हमें ठंडा ठंडा छाव दे रहा है, और वो जो धूप का जो ताप है उस ताप से हमें बचा रहा है। बहुत ही सुंदर भगवान कृष्ण कह रहे हैं। निदाग अक्र आतपे तिग्मे छाया भी स्वामी स्वापी आत्मनाम आत पत्रायितान विक्षे द्रुमान आह ब्रज अवकोशः। हे ब्रज के बालकों देखो, ब्रज अवकोश, हे ब्रज के बालकों, कह रहे थे कि ये जो सूर्य जो है इतना ताप दे रहा है, तब सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं जब सूर्य की तपन पाकर सूर्य ताप दे रहा था, कृष्ण ने देखा कि सारे वृक्ष मानो उन पर छाया करके छाते के काम कर रहे हैं, तब वे अपने ग्वाल मित्रों से इस प्रकार बोले। क्या बोले? हे श्लोक कृष्ण, हे अंश श्रीदाम सुबल अर्जुना, विशाल वृषो बोजस्विनी देव देव परस्त वरुतपा, ये सब सकाओं के नाम है, पश्यते तान महाबागान पराते कांत जीवितान वात वर्षो तपहिना तपहिमान सहंतो वारयंतिना। हे श्लोक कृष्ण तथा अंशु, हे श्रीदाम, हे सुबल तथा अर्जुन, हे वृषभ, हे ओजस्वी देव प्रस्त तथा वरुतप, जरा इन भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो, जिनके जीवन ही अन्यों के लाभ हेतु समर्पित है, वे हवा वर्षा धूप तथा पाला को सहते हुए भी इन तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं, हमें धूप से वर्षा से इत्यादि से रक्षा कर रहे हैं। और बहुत सुंदर आगे वर्णन आएगा कैसे वृक्षों का भगवान गुणगान पांच या श्लोकों में कर छह श्लोकों में करते हैं। जिस वृक्षों का महिमा चैतन्य महाप्रभु आगे जाके अपने लीला में भी करेंगे, जिसका वर्णन चैतन्य चैतामृत में आता है, और जिन वृक्षों का वर्णन करते हुए चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टकम के शिक्षा के तीसरे शिक्षा में बोलते हैं, तरो रेव सही सुना त्रिनादी सुनी चेना तरोर भी सही सुना मानी न मान देना कीर्तन सदा। वृक्षों का महिमा भगवान गाएंगे, भगवान अपने जीवों में वृक्षों का गुणगान आज तक ऐसा कोई किया नहीं होगा, पर भगवान कितना सुंदर वृक्षों का गुणगान करते हैं ये कल आने वाले श्लोकों में देखेंगे। दूसरे शब्दों में भगवान सब कुछ जानते हैं, हमने क्या क्या किया वो जानते हैं, वृक्षों ने क्या क्या किया वो जानते हैं, इन ब्राह्मण पतियों ने क्या क्या किया वो जानते हैं, वो गोपियों ने क्या क्या किया वो जानते हैं, इसी प्रकार से हमने क्या क्या किया भगवान जानते हैं, हमें अभी केवल यही करना है कि हमें कृष्ण आप चाहिए, इस प्रकार से तीव्र भक्ति करें, वो भी भगवान जान लेंगे और उस इच्छा को पूरा करने, भगवान जो कि भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है, वो हमारे इच्छा भी पूरा करेंगे। ऐसे भक्त वत्सल भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर लीलाओं को परीक्षित महाराज जी को सुनाते हुए परीक्षित महाराज जी को का भक्ति को और पोषण कर रहे हैं। इसी प्रकार से इन कथाओं को सुन सुन के हमारा भक्ति का भी पोषण होगा। तो यही कृष्ण भक्त वत्सल है, इन्हीं का भक्ति हमें करना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है। यही इन लीलाओं से शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अतः गोप्य परिवृत्तो भगवान देवकी सुतो वृंदावन गतो दूरं चार्यं गासाग्रज। धूप में अब भगवान चल रहे हैं और वो वृक्षों का गुणगान कल से हम सुनेंगे। किसी का कोई प्रश्न एकादा तो पूछ सकते हैं।